शनिवार 3 दिसंबर इंडिया बोल के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा घरों में फिल्म शुरू करने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा। इस दौरान सिनेमा स्क्रीन पर राष्ट्रध्वज होगा। हॉल में मौजूद सभी लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वे राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान बजते वक्त सिनेमा हॉल में कोई आए जाए नहीं और दरवाजे बंद रखे जाएं। ऐसा न करना राष्ट्रगान का अपमान करने के बराबर होगा। आप क्या सोचते हैं, सिनेमा में राष्ट्रगान बजने से क्या होगा? आज इंडिया बोल में इसी पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1800-102-7001 पर। चर्चा थोड़ी देर में, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। चीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ताइवान की राष्ट्रपति के बीच बातचीत पर विरोध दर्ज कराया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर जानकारी दी है कि अमेरिका के सामने औपचारिक तौर पर मामला रखा गया है। चीन ने अमेरिका के संबंधित पक्षों से ताइवान से जुड़े मुद्दों को सही तरीके से संभालने को कहा है। ट्रंप ने ताइवान की राष्ट्रपति साई यिन वेन से बात करके अमेरिका नीति में बदलाव किया है। अमेरिका ने साल 1979 में ताइवान से रिश्ते तोड़ दिए थे। चीन ताइवान को खुद से अलग हुआ प्रांत मानता है। सीरिया से मिली खबरों के मुताबिक सरकारी सेना ने पूर्वी एलेपो के करीब 60% हिस्से पर अधिकार हासिल कर लिया है। पूर्वी एलेपो पर साल 2012 से विद्रोहियों का कब्जा रहा है। सरकारी सेना एलेपो के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आगे बढ़ रही है। एलेपो में मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक मानवाधिकार संगठन आम लोगों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफान दे मिस्तूरा ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया है कि सिर्फ इस्लामिक स्टेट को मात देने से सीरिया और इराक में लंबे वक्त से जारी संघर्ष खत्म नहीं होगा। ट्रंप 20 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे। मिस्तूरा ने रोम में आयोजित सम्मेलन में कहा, मैं जब निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम से मिलूंगा तो बड़ा सवाल पूछूंगा। दुनिया में कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा कि सीरिया और इराक में प्राथमिकता दाइश से लड़ना होना चाहिए। लड़ना या फिर दाइश को हराना? अगर दाइश को हराना कहा जाए तो हमें इराक और लीबिया से मिले सबक याद रखने चाहिए। हमें एक राजनीतिक और समग्र समाधान तलाशना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप एक साथ लड़ेंगे लेकिन हरा नहीं पाएंगे। इसलिए मुद्दे की बात यह है कि सीरिया में सैन्य या असैनिक जीत मिले, आपको क्षेत्र के लिए एक वास्तविक समाधान तलाशना होगा। ये थे स्टेफान दे मिस्तूरा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर कोलंबिया में सोमवार को विमान हादसे में मारे गए फुटबॉल खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित समारोह में शरीक हुए। ये समारोह ब्राजील के शिपपेको एयरपोर्ट पर आयोजित हुआ। ताबूत में रखे खिलाड़ियों के शव हवाई जहाज के जरिए लाए गए। भारी बारिश के बीच सेना के बैंड ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मारे गए खिलाड़ियों के परिजन रोते रहे और ताली बजाते रहे। टीम की हरी सफ़ेद रंग की जर्सी पहने हजारों लोग उन्हें विदाई देने में जुटे। यूरोप के अखबारों ने दावा किया है कि रियल मैड्रिड के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और खेल से जुड़े दूसरे लोगों ने लाखों डॉलर कमाई का टैक्स अदा नहीं किया है। उन्होंने अपना टैक्स बचाने की अशगा कहे जाने वाले देशों में पहुँचा दिया है, जबकि रोनाल्डो के एजेंट ने इन आरोपों से इनकार किया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल
में स्वागत है आपका। मैं हूं निखिल रंजन। कुछ लोग मानते हैं कि सभी दफ्तरों, अदालतों और दूसरी जगहों पर सुबह काम शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जरूरी कर देना चाहिए, और बहुत से लोग मानते हैं जो कि इससे देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और लोग देश के बारे में कुछ अच्छा सोचने के लिए प्रेरित होंगे। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि देश राष्ट्रगान सिनेमा हॉल में बजाने से क्या कुछ बदलाव आएगा, क्या कुछ होगा, क्या परिवर्तन आएगा। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, स्वागत है आपका। तो आप क्या सोचते हैं इसको बताने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। टेलीफोन लाइन खुल चुकी है, बस फोन उठाइए और बताइए कि सिनेमा में राष्ट्रगान बजाने से क्या होगा। आपकी बात शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ रामकृपाल जी, राष्ट्रगान सिनेमा हॉल में बजाने से क्या कुछ होने जा रहा है?
देखिए, ये पहल राष्ट्रगान सिनेमा हॉल में बजाना ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले भी था। हम लोग बचपन में देखते थे, तब ये होता था कि फिल्म ख़त्म होने के बाद राष्ट्रगान होता था, लेकिन अमूमन लोग क्या करते थे कि जल्दी जाने की होती थी तो एक तरह से कुछ लोग रुकते भी थे, कुछ लोग निकल जाते थे अपना सब उस तरह से। अब खैर मुझे इतना तो पता नहीं है कि क्यों नहीं, ये क्यों बंद हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन मेरा देखिए एक कहना ये है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का किसी का भी सम्मान होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ये सामाजिक, एक सामाजिक आंदोलन की तरह इनको होता है कि इसके प्रति आप डंडे से हर काम नहीं करा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीयता कोई एक दिन में नहीं आ जाती है, वो धीरे धीरे होती है। दूसरी बात यह है कि सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान प्रदर्शित करने के तरीके, कोई जरूरी नहीं है कि आप खड़े हो जाए तो ही सम्मान होता है, बैठ जाए तो ही सम्मान होता है।
जी, कोर्ट का एक फैसला भी था उस बारे में, आपको ध्यान होगा कि हैदराबाद की ये घटना है
जी,
जहां पर कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था कि सिर्फ बैठ खड़े होना जरूरी नहीं है और आप सम्मान दिखा करके दूसरे तरीकों से भी सम्मान दिखा सकते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं, जी अपना नाम बताइए।
जी, मेरा नाम मुजीबुर रहमान है, मैं तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान से।
मुजीबुर रहमान साहब, नागौर जिला राजस्थान से, बताइए क्या कहते हैं आप इस बारे में?
मैं सर ये कहना चाहता हूँ, हाईकोर्ट का फैसला सही है,
सुप्रीम कोर्ट का, जी
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह एक विकलांग के साथ पिछले दिनों जो मारपीट की घटना हुई, उसे बाधित किया गया जबरन खड़ा करने के लिए, ऐसा किसी विकलांग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
जी बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कि सिनेमा हॉल में ये इस तरह से ना बजाया जाए रोज, या बजाया जाए?
बजाना चाहिए सर, राष्ट्र का गान है, बजाना चाहिए, इसका सम्मान।
आप ये कह रहे हैं कि बजाया जाए, लेकिन अगर कोई ना कर पा रहे तो उसके साथ मारपीट ना हो, ये आप कहना चाहते हैं?
हाँ सर।
जी बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं, जी अपना नाम बताइए।
जय हिंद।
जी बताइए।
मधुबनी बिहार से सूरज मिश्रा बोल रहा हूँ।
सूरज मिश्रा जी, मधुबनी बिहार से, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत मेरे लिए दुख की बात है कि आज हमें जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। जहाँ तक कानून की बात है तो कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कानून बनाना जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन है उसे लागू करना और उस पर पब्लिक को स्टैंड करना।
जी
हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ जो कानून बनाया गया वो गलत नहीं है, कानून बनाया गया राष्ट्र का, राष्ट्रभक्ति का गीत का सम्मान किया जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ये सही है, लेकिन इसे कानून के थ्रू लागू नहीं करना चाहिए।
आप भी ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती लागू नहीं करना चाहिए। इस बारे में, इस बारे में संविधान क्या कहता है, हमारा, हमारे जो कानून के जानकार हैं वो क्या कहते हैं, ये सुनने के लिए आइए, मैंने बात की सुभाष कश्यप से कि वो क्या मानते हैं इस बारे में, उनका क्या कहना है, सुनते हैं।
देखिए, संविधान के मूल कर्तव्य संबंधी भाग में सबसे पहला जो प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बताया गया है वो है संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं संविधान के वो निदेशक तत्वों की तरह लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, कानून के द्वारा उन्हें किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, वो एक तरह से परसुएसिव वैल्यू है। और अगर प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य कोई है तो ये जरूरी है कि जन जन में उसके बारे में जागरूकता हो, लोग जाने उसको और उसका सम्मान करें, और ऐसा कराने के लिए जो कुछ भी किया जा सके वो मान्य होना चाहिए।
ये थे सुभाष कश्यप। आप लोगों की भी बात सुन रहे हैं, लोग भी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का सम्मान जरूर होना चाहिए, देशभक्ति की भावना हर इंसान के अंदर जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये बात बहुत ज़्यादा डंडे मार करके लोगों को ना समझाया जाना चाहिए, उनको बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि वो इस प्रति, इस तरह के प्रतीकों का सम्मान प्रदर्शित करें।
देखिए, अभी जो जो भी कहा, जैसे सुभाष जी ने भी कहा और जो श्रोता अभी
जी मुझे
दो मैंने सुना, देखिए सब इस बात पर सहमत हैं जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। जैसे ही किसी चीज़ को, कानून हमेशा एक चीज़ इम्प्लाइड उसमें होती है कि कोई अगर नहीं माना तो एक दंड, दंड का एक होता है खतरा, उसमें एक एक बड़ी भारी चीज़ रहती है एक डर का। देखिए, जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं अगर कोई उसके साथ ये चीज़ है तो उसका मिसयूज कैसे होता, मैं बताऊँ। देखिए भीड़ जहाँ भी होती है वो होता तो है कि कानून उसको दंडित करेगा या जो कानून कोई जो भी करेगा, लेकिन जहाँ ऐसा क्या होता है भीड़ में जुनून होता है। और जब आप कह रहे हैं किसी ऐसे सामूहिक स्थल पर जहाँ पे 200 250 300 लोग खड़े हों, कोई इंतज़ार नहीं करेगा कि अगर कोई व्यक्ति है किसी कारण से नहीं खड़ा हो सका, तो आपने देखा होगा ऐसे
ऐसी घटना हुई,
ऐसे केसेस हुए हैं, तो क्या होता है कि भीड़ कानून अपने हाथ में ले लेती है। खतरे इसके ऐसे होते हैं, आप कोई ऐसा नियम बनाया है जो दंडात्मक हो, जिसको कि एक घर में या कहीं ऐसी है कि अदालत का सम्मान नहीं किया, तो वो अदालत उसके लिए काम करती है तमाम चीज़। लेकिन हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर हम ऐसा प्रावधान कर रहे हैं जिसमें दंड भले न दें, लेकिन कल को पब्लिक को अगर ये लग गया कि ये तो ऐसा बाध्य बना दिया गया कि आपको खड़े होना है और कोई नहीं खड़े हुआ, तो भीड़ वहीं फैसला करने लगती, भीड़ अदालत का काम करने लगती, बड़ा भारी खतरा है।
ये बात जी, ये बात ओम थानवी ने भी ट्विटर पर लिखी है कि राष्ट्रगान के मामले में बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रगान के मामले में छद्म देशभक्ति वाली ब्रिगेड के हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा थमा दिया है, कहीं छींटाकशी हुड़दंग मारपीट ना हो, ये आशंका उन्होंने जाहिर की। लोग और क्या कहते हैं वो सुनते हैं। जी अपना नाम बताइए।
जी नमस्कार, हम पश्चिमी चंपारण जिला बिहार से बोल रहे हैं, कामेश्वर ओझा।
कामेश्वर ओझा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए चंपारण से आप आते हैं, क्या कह रहे हैं?
जी हमारा मानना है सर कि लोगों को खुद इस मामले में राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए।
जी
जी,
सम्मान करना तो सब कह रहे हैं कि चाहते हैं कि सबको करना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं कि सम्मान करने की बात तो सब लोग मान रहे हैं कि होना चाहिए, उसमें तो कहीं कोई संशय ही नहीं।
पर निर्णय लेना पड़ा इस मामले पर, ऐसे तो सर अगर सब कोई अगर इस चीज को माने और समझे तो कोर्ट को निर्णय ही नहीं करना पड़ेगा।
आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं मानते हैं,
सम्मान करना चाहिए।
जी आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, इस वजह से कोर्ट को विवश होना पड़ा।
तो जितने भी लोग भारत वर्ष में रहते हैं
जी,
सबको इस चीज का सम्मान करना चाहिए।
जी जी रामकृपाल जी, आप
मैं
क्या कहते हैं?
एक छोटी सी बात कह दूं
जी,
सम्मान मैं भी करता हूं, सम्मान प्रकट करने के तरीके, देखिए एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक खूबसूरत परिभाषा जो है, जो उसकी बेसिक है, फिलॉसफी है, वो यह है कि बहुमत का शासन होता है और अल्पमत का, असहमति का अधिकार का सम्मान होता है, ये लोकतंत्र की बात है। कोई भी चीज़ है अगर कल को कोर्ट ये कहती है तो वो सबके लिए मान्य होता है, लेकिन हम आदर करते हैं, आदर करने के तरीके क्या होंगे इस पर अगर कोई ये मानता है कि भाई अगर मान लीजिए मेरी मत भिन्नता है कि मैं सम्मान करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको कोडिफाई किया जाए कि आप खड़े रहेंगे, आप मुस्कराएंगे नहीं या कुछ करेंगे, ये ऐसी चीज़ें होती हैं किसी भी समाज में, जैसा सुभाष जी ने भी कहा कि ये परसुएसिव होती है। आप वो देखिए स्कूल के समय से, जैसा कि आप उस दिन जजमेंट में उन्होंने एक वाक्य कहा है, अब वो दिन आ गया है, आज वो दिन आ गया है, इट मीन्स कि हमारे जो 70 साल में हमने कहीं इस चीज़ को एक 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 तरह से उसको पाठ्यक्रम सामाजिक मूवमेंट के रूप में, अब आप देखिए जैसे क्या हुआ इस देश में, क्रिकेट ने जो भी होता है, देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि राष्ट्रीयता की भावना, मैं समझता हूँ क्रिकेट होता है, अब देखिए पूरा देश ऐसे लगता है कि जैसे सारी चीज़ है, तो अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जश्न मनाने का सबका तरीका एक ही होता है, बहुत सारे लोग कुछ ज़्यादा जुनूनी हो जाते हैं, वो अपने तरीके से मनाते हैं, खुशी होती है। तो मेरा ये कहना है कि सम्मान के प्रतीकों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसके तरीके क्या होंगे, जब आप वो कहते हैं तो क्या होता है कि उसके एक अनावश्यक रूप से विवाद पैदा होता है। हालांकि जो अदालत कहेगी, देखिए अदालत है सरोपर, मैंने कहा कि आफ्टर ऑल वी कैन आर्ग्यू अप टू 11th आवर, लेकिन 12th आवर पे जो फैसला आएगा सबको उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन असहमति का अधिकार, अगर कोई असहमत होता है किसी चीज़ पर, तो ये नहीं मानना चाहिए कि जो आदमी तरीके से असहमत है वो सम्मान नहीं करता है, उसमें भी वो भी उतना ही राष्ट्रीय है, ऐसी बात नहीं है। तो ये असहमत के अधिकार का सम्मान करना भी हमें आना चाहिए।
जी बिल्कुल, बहुत से लोग हैं जो अपने अपने तरीके से सवाल उठा रहे हैं। हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, लेकिन ये सवाल भी उन्होंने पूछा कि इससे देशभक्ति की भावना कैसे बढ़ेगी, लोगों में देशभक्ति की भावना का किस तरह से प्रचार होगा।
देखिए मैं एक बात बताऊं, हर चीज़ को, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इशू आए हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा मैं पॉलिटिकल रंग में नहीं ले जाना चाहता। कई बार हर चीज़ पर कुछ सवाल होते हैं जिससे एक बार लगता है कि कहीं थोड़ा सा डेविएट हो रहा है। मेरा ये कहना, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज हो, कहीं भी हो, कुछ उसके प्रतीक होते हैं। राष्ट्र भी, जब राष्ट्र का जो कंसेप्ट हुआ है कितने सालों का है, अभी देखिए उसके पहले भी, लेकिन मनुष्य का जो विकास हुआ है वो हुआ है एकाकी न रमते, अकेले रमण नहीं होता। यहाँ से उसमें सामूहिकता का ज्ञान आया कि हमें साथ साथ रहना है। जब आप साथ साथ रहते हैं, एक समाज है, तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रतीक बनाने पड़ते हैं, कुछ मापदंड बनाने पड़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि लोग जो कानून बनता है उसका सम्मान करते हैं, तरीके उसके अलग होते हैं, आप उसे डंडे से नहीं। समाज में दो ही चीज़ होती है कि एक कलम होती है और एक डंडा होता है, व्यवस्था दो ही थमाती है। मेरा ये कहना है कि ये कलम वाली चीज़ है, यानी कुल मिलाकर कलम का मतलब, कलम एक ऐसी प्रतीक है कि आप एक लोगों को कन्विंस कीजिए, मन से कीजिए, थोपिए मत, लादिए मत। तो जो भी चीज़ होती है, और हमेशा वो मजबूत रहेगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज़ को देखिए, सिलेबस से लड़का उब जाता है, हॉबी अपने आप से अपनाता है, तो किसी चीज़ को आप एक हॉबी के रूप में उसको कहिए कि भाई ये रुचि आप उसकी पैदा कीजिए। राष्ट्रीयता है, आप प्राइमरी स्कूल से लेकर के बच्चों को फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तिरंगा झंडा, राष्ट्रगान, ये सब सारी चीज़ों पर अगर आप उससे एक पैदा करें शैक्षणिक रूप से, तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जो नई पीढ़ी तैयार होती है, जैसे पर्यावरण का देखिए, पर्यावरण के लिए कहीं कोई दंड नहीं है, लेकिन आजकल बच्चे किस तरह से उसके प्रति इतने सेंसिटिव है, स्कूलों के लड़के, मैं समझता हूँ कि
बड़े नहीं
है, हम लोगों से ज़्यादा सेंसिटिव है वो। तो ऐसे ही राष्ट्रीयता की भावना को भी वो कीजिए, जो 70 साल में हम लोगों ने नेग्लिजेंट रहे हैं, उसको अभी भी मौका है कि उसको ये कीजिए, उसको डंडे से या कानून से या डर से कोई चीज नहीं थोपनी चाहिए।
जी, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं। जी, अपना नाम बताइए।
हाँ जी, मैं अब्दुलजीत भट्ट जी जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ।
जी भट्ट साहब, कश्मीर से आपका बहुत स्वागत है, बताइए कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं आप।
देखिए जी, ये जो राष्ट्रीय गान के बारे में 1987 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो केरला में ये एक विवाद हुआ था, लड़कों ने इसको नहीं गाया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे उनके माँ बाप, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया था कि कोई भी चीज किसी पर थोपी नहीं जाएगी, और आज सुप्रीम कोर्ट उसी फैसले को थोप रहा है। तो मेरे ख्याल में जो ये राष्ट्रीय गान है ये विवादित रहा है, ये तो 1911 में जॉर्ज पंचम जब आए वहां पर कलकत्ता में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको उनकी स्वागतम के लिए बोला था, इसके जो मीनिंग है।
लेकिन बाद में भट्ट साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, उसको बाद में रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने ये क्लियर कर दिया था कि ये उनके सम्मान में नहीं रचा गया था, और उस पर काफी लंबी बहस हो चुकी है। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आपके हिस्सा लेने के लिए। हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं। जी, अपना नाम बताइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे टेलीफोन लाइन का संपर्क गड़बड़ हो गया। हेलो,
जी जी,
जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी,
हाँ, अपना नाम बताइए।
जी, मैं महंत जितेंद्र दास बिहार से बोल रहा
हूँ। महंत जितेंद्र दास बिहार से बोल रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप?
सबसे पहले मैं आपको, आप सभी को, आपके सभी परिवार को एवं बीबीसी के संपादक सभी महोदय को और बीबीसी के सभी श्रोता बंधु को मैं सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
जी, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। जी बताइए, अपनी बात कहिए।
जी
महन जी, अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप?
आप में जो विद्वता है, आप में जो परिपक्वता है, उस तरह का परिपक्वता और विद्वता हम में नहीं है। हम लोग कम पढ़े लिखे लोग, आप हमको सुनने का प्रयास करिएगा, इसी से बात कर रहे हैं।
जी जी बताइए, कहना क्या चाहते हैं हम?
आप लोग जो भी बात कर रहे हैं संबंधित,
महन जी आपकी लाइन खराब है, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप दोबारा हम डायल कर रहे हैं आपको, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। हमारे अगले श्रोता भी हमारे साथ हैं। जी अपना नाम बताइए। हेलो, लगता है इनसे भी संपर्क टूट गया। रामकृपाल जी, एक और जो बात, एक जो मुद्दा उठ रहा है, बहुत मशहूर लेखक हैं चेतन भगत
जी,
उन्होंने कहा है कि सिर्फ सिनेमा ही क्यों, सारे टीवी प्रोग्राम से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए, अदालतों में बजाया जाए, खेल होने से पहले बजाया जाए, दफ्तरों में बजाया जाए, ये जो दलील है कि इससे राष्ट्रगान के प्रति लोगों की भावना जो है वो मजबूत होगी अगर आप ऐसा मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये एक वो किया, कटाक्ष किया है, लेकिन बाकी लोग भी ऐसी मांग उठा रहे हैं।
नहीं देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं उस तरह से नहीं, मेरा देखिए पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अल्टीमेटली किसी भी राष्ट्र को जहां भी कोई भी अगर अदालत का जो फैसला आता है, हम असहमत होते हुए भी जो फैसला होता है समाज में, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको हर चीज़ माने, हर जो भी कानून बनता है ऐसा नहीं होता है कि वो 100% लोग उसके समर्थन में थे, लेकिन देश और समाज के लिए बहुमत और जो फैसला आता है अदालतों का उसको हमें मानना पड़ता है, मानना चाहिए। लेकिन एक जो सवाल इन्होंने उठाया, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम सिनेमा हॉल की बात तब की कर रहे हैं, अब सिनेमा हॉल लोगों के घरों में पहुंच गया है।
जी बिल्कुल।
अब आप ये देख लीजिए कि कितनी फिल्में लोग अपने घर में टेलीविजन पर आती हैं, सिनेमा हॉल तो आदमी एक दिन जाता होगा हफ्ते में, कभी महीने में,
बिल्कुल
अपने घर में तो रोज फिल्म देखता है। और ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब राष्ट्रगान बजता है, जैसे मैं बताऊं कोई भी क्रिकेट मैच शुरू होता है राष्ट्रगान बजता है। मेरा कहना है कि ये सब क्या जरूरी है कि घर के सारे लोग उस समय खड़े हो जाते हैं? देखिए सम्मान तो ये है कि सिर्फ सिनेमा हॉल के सामने खड़े हों, और अब मेरे घर में अगर राष्ट्रगान बज रहा है और मैं वहाँ नहीं खड़ा होता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैंने दिल से नहीं स्वीकार किया है।
जी जी,
है कि नहीं?
बिल्कुल।
तो कोई भी चीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सिनेमा हॉल की बात थी, जब जिस समय की बात थी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी उससे इतनी आगे आ गई है, अब सिनेमा हॉल जैसा अब घर में पहुंच चुका है, तो सवाल इस बात का है कि इसलिए मैंने कहा कि वो चीज़ अगर अंदर होगी तो आदमी अपने घर में भी सम्मान करेगा।
बिल्कुल।
लेकिन 26 जनवरी को जब जनगणमन होता है, लोग घरों में बैठ करके टीवी देखते रहते हैं, तो क्या कभी कोई सर्वे हुआ कितने लोग उसमें खड़े हो जाते हैं, नहीं खड़े हो जाते हैं? तो बात वही आ रही है कि देखिए चीज़ अच्छी है, प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का, इससे एक एकता, विभिन्नता में एकता जो आप कह रहे हैं ना, तो ये इसका भी एक वो है कि कम से कम वन नेशन होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ भय से नहीं, मन से।
जी मन से, मैं इस बात पर आपके लौटूंगा, और साथ ही हम ये भी सवाल डिस्कस करेंगे कि इसकी कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो क्या हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे कुछ श्रोता जुड़ रहे हैं उनकी आवाज़ सुनते हैं। जी अपना नाम बताइए।
हेलो।
जी
हेलो।
जी अपना नाम बताइए।
हाँ सर, मैं दिलावर हुसैन कादरी बोल रहा
हूँ। जी दिलावर साहब कादरी, दिलावर साहब कादरी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर?
बिल्कुल, सिनेमा घरों में राष्ट्रगान होना चाहिए, राष्ट्रगान बन जाना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, मुगल वतनी का प्रतीक है। लेकिन सर ये अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, तालिबानी फरमान ये नहीं होना चाहिए।
हाँ लेकिन आप कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल में बजना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दूसरी जगहों पर भी। कादरी साहब जी, कादरी साहब दूसरे लोग, कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सिनेमा हॉल में ही क्यों बजना चाहिए, और भी दूसरी जगहों पर बजना चाहिए।
कह रहा हूँ राष्ट्रगान जो है सिनेमा हॉल में बजना चाहिए, हमारे घरों में बजना चाहिए, रेलवे स्टेशन पे बजना चाहिए, हमारे देश का प्रतीक है। लेकिन देशभक्ति का जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए सर,
ये नहीं होना चाहिए।
एक के हाथ में सर्टिफिकेट, वो ज्यादा देशभक्त है उससे मैं ज्यादा कम देशभक्त हूँ, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए सर। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल,
ये जो बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये तय करने का पैमाना नहीं होना चाहिए कि कौन ज्यादा देशभक्त है या कौन राष्ट्रभक्त है। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। जी अपना नाम बताइए।
हाँ नमस्कार सर, हरीश छोटा बोल रहा हूँ गुजरात से।
जी डोडा साहब स्वागत है आपका। हाँ, कार्यक्रम में बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
सर जो जनगण राष्ट्र गान है वो तो सबके दिलों में होता है।
जी बिल्कुल।
और ये ऑर्डर हो सुप्रीम कोर्ट का या दिल से हो।
जी बिल्कुल,
देश के सभी लोगों का दायित्व बनता है कि वो सभी निभाए इस भूमिका को।
जी
अने सर मैं ये एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं बनासकांठा जिला से बोल रहा हूँ।
जी
हमारे जिला पंचायत है जो पालमपुर स्थित है, जो सुबह 11 बजे शुरू होती है वो राष्ट्रगान से शुरू होती है।
अच्छा
अच्छा, हमारे तो... जिला पालमपुर मतलब में रोजे जो सोम से शनि तक जनगणना से चालू होती है जिला पंचायत, इसके बाद से हमें गर्व है हमारे जिला।
तो ये फैसला तो आप लोगों ने खुद लिया होगा ना, इसके लिए आपको किसी सरकार ने तो नहीं कहा?
हाँ हमारी हमारी जिला पंचायत खुद ही तय करती है।
खुद तय करती है, तो ये लोगों को तय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ना। आप भी मान रहे हैं कि लोग खुद तय करें, किसी को कहना ना पड़े।
हाँ ये हम खुद कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं उसको ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सही दिया है।
जी आप कह रहे हैं कि जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करवाया जाना चाहिए।
हाँ, करवाया जाना चाहिए। जी, एकता की भावना।
जी डोडा साहब, बहुत 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 शुक्रिया आपकी इस पूरी बातचीत के लिए। मैं आपसे कह रहा था इस पर जाने से पहले कि हम कुछ व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं उनकी बात करेंगे। तो आपको भी ये एहसास होगा कि सिनेमा हॉल में जैसे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, कोई उस वक्त आने का समय होगा, लोग उनको कैसे रोकेंगे? कोई घटना हो जाती है, कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसको कैसे रोकेंगे? दूसरी बात यह है कि कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो ये जो सजा अगर किसी को दी जाएगी या कोई लोग अगर वो करेंगे तो उसको कैसे रोका जाएगा?
नहीं, मैं तो बेसिक एक सवाल अब जो मैंने इसके पहले कहा
जी,
हम राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान की बात अगर कर रहे हैं तो वो जहाँ कहीं भी बज रहा हो उसका सम्मान होना
हर जगह होना चाहिए।
ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना कि सिर्फ सिनेमा हॉल के नाते, कि सिनेमा हॉल में अगर वो है तो उसका कुछ ज्यादा आदर हो जाता है और बाहर बज रहा है तो कम आदर होगा
जी।
या बाहर जो अगर बज रहा है तो आप अपमान कर सकते हैं, चले जा सकते हैं, चाहे खड़े हों नहीं खड़े हों घरों में, लेकिन सिनेमा हॉल जरूर खड़ा। तो मेरा कहना यही है जो आप कह रहे थे। देखिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी स्कूलों में प्रार्थनाएं होती हैं। देखिए, वहां पर है अपने अपने लोग, एक ट्रेडिशन है, जैसे जाइए तो हमें बचपन से याद है कि किस तरह प्रार्थनाएं होती थी उसमें भी एक। अब आप मान लीजिए कुछ स्कूल जो चाहें तो वो राष्ट्रगान भी कर सकते हैं, राष्ट्रगान भी होता था, प्रार्थनाएं भी होती थी। हमारे स्कूल में कम से कम मैं जानता हूँ, बहुत सारे स्कूल में नहीं होता राष्ट्रगान।
यूपी के सरकारी स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में,
जितने श्रोताओं से मैंने अभी आपको सुना है, बहुत पहले बार मैं शायद इस तरह के प्रोग्राम में, बहुसंख्यक को अगर आप देखेंगे मेजोरिटी ओपिनियन क्या है कि सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये परसुएसिव हो, ये मतलब ये लोगों को इसकी आज़ादी मिलनी चाहिए कि उसके तरीके, उसका सम्मान उनमें स्वतः जागृत हो। किसी भय से कोई सम्मान करे वो कभी भी स्थायी नहीं होगा और वो हमेशा एक विवाद के घेरे में रहे।
कुछ और लोग हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताइए। हेलो
सर, सितेश राम मोतिहारी ढाका से बोल रहा
हूं। जी जी जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, जल्दी से बताइए, समय कम है।
सर कहना चाह रहे कि ये हाई फैसला दिया है हॉल के लिए तो अच्छा नहीं है, हॉल में बहुत भीड़ रहती है। ठीक है सर
जी,
जी, और मतलब कि आदेश ये ठीक नहीं है हम लोग,
मतलब आपको लगता है कि सिनेमा हॉल में ये इस तरह से करना ठीक नहीं है?
जी, सिनेमा हॉल में करना ठीक नहीं है सर, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है और परेशानी भी बहुत तरह की होगी उसमें।
ये इन्होंने एक व्यवहारिक दिक्कत बताई है, सिनेमाघरों में बहुत भीड़ होती है, लोग खड़े हो जाएंगे तो और दिक्कत होगी।
देखिए, दिक्कत मैंने आपसे ये कहा था ना कि हमेशा क्या होता है, जो जुनू होता है ना, भीड़ में ही जुनू होता है।
जी जी,
तो मैं डर उसका एक ये है कि किसी भी चीज को अगर कोई किसी कारण से किसी की भीड़ में अगर परेशानी है, वो तीन घंटे जो बैठा हुआ फिल्म देख रहा अचानक नहीं खड़ा हो सकता, या थोड़ा कई बार होता है और भी रीजन हो सकते हैं जिस विकलांग, तो वहाँ डर ये बात होता है कि लोग कानून अपने हाथ में ले लेंगे और वो समझते हैं कि ये जो बैठा रहा ये हमारे राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है,
जो तो लोग नहीं कर पाएंगे
ये,
उनको,
ये,
उनको
एक बहुत बड़ी डर होती है इसकी, जैसा वो खुद कह रहे हैं। तो मेरा ही कहना है कि हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भीड़ में कोई दंडात्मक ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तत्काल होता है कि भीड़ में विवेक कम होता है, जुनून हो जाता है और उसके खतरे आप देखते रहे हैं, पहले भी हुए हैं, लोग सिनेमा हॉल में हुआ, कोई नहीं खड़ा हुआ तो उसको पीट दिया लोगों ने। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, और अगर ये कहीं से भी आएगा कि नहीं अब इस पे कानून है, और कानून में हमेशा एक चीज़ होती है उसकी, वो होता है कि अगर नहीं माना तो देयर इज वो पीनल, तो वो पीनल है या नहीं है परसुएसिव। तो मेरा ये कहना है कि इसको एक सामाजिक आंदोलन की तरह होना चाहिए, कि एक एक जैसे है उसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि ड्यूटी है, आप करें न करें, एक बच्चा डूब रहा है, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी हमारी होती है कि हम कूद के उसको बचाएं, लेकिन कानून ये नहीं, कानून में कोई प्रावधान नहीं कि अगर मैं नहीं कूदा तो मुझे कोई जेल हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि बट इंसानियत होती है, तो किसी में भी आप प्रतीकों के प्रति एक जागरूकता पैदा कीजिए, एक सामाजिक और शैक्षणिक जागरूकता हो लोगों में, तो जब बच्चे पीढ़ी बड़ी होगी तो अपने प्रतीकों के प्रति सजग होगी, सम्मान करेगी।
स्कूल आपके हिसाब से एक अच्छी जगह है जहां इसकी शुरुआत होनी
चाहिए, भी समाज में जैसे उन्होंने कहा कि भाई नगर पालिकाएं हैं या कोई चीज होती है, छोटे छोटे लेवल पर आप प्रोत्साहित कीजिए, जैसे योगा के लिए है, मोदी जी ने किया कि योगा के लिए, अब देखिए धीरे धीरे लोग अपना रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल कंपलसरी कर देंगे, पाठ्यक्रम का हिस्सा बना देंगे, तो लोग उसको नहीं करेंगे। पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए लेकिन उसको एक ऑप्शनल के तौर पर।
जी रामकृपाल जी, हमारे स्टूडियो मैनेजर अजित सारथी इशारा कर रहे हैं कि अब वक्त नहीं बचा है, इस कार्यक्रम को हमें यहीं रोकना पड़ेगा, चर्चा आज यहीं तक, और अब समाचारों के लिए भी समय नहीं बचा है, तो आप आइए हमारे साथ फिर अगले प्रोग्राम में। घटनाचक्र में। बहुत शुक्रिया, निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।